ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओके, हम लोग अध्याय एक पढ़ रहे हैं और मैं इस अध्याय को हर श्लोक नहीं पढ़ रहा, क्योंकि आप खुद जाके पढ़ सकते हैं। इस अध्याय में ज्यादा हर श्लोक पढ़ने का कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि जनरली बता रहे हैं कि पांडवों की सेना क्या है, कौरवों की सेना कैसी है, एक दूसरे के सामने कैसे खड़े हैं, ये सारी चीजें एक्सप्लेन है। बट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे वो मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा। सबसे पहले जो पहला श्लोक है वो पढ़ लेते हैं हम। धृतराष्ट्र वाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः मामका पांडवाश्च एव किमकुर्वत् संजय। एनीवे, इस अध्याय में तीन टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत सारी चीजें मगर तीन टॉपिक्स इंपॉर्टेंट। सबसे पहली बात है कि अर्जुन ने युद्ध करने से क्यों मना किया। और जो आप सोच रहे हो अभी, शायद आंसर वैसा नहीं निकलेगा, अभी मैं दिखाऊंगा आंसर क्या निकलेगा। और दूसरी बात है कि भगवान क्यों युद्ध करने के लिए उतने उतारू थे, भगवान क्यों चाहते थे युद्ध, और उसमें भी आप जो सोच रहे हो वो उत्तर नहीं निकलेगा, कुछ और ही निकलेगा। अभी आपको दिखाऊंगा मैं क्या है प्रभुपाद क्या कह रहे हैं। और तीसरी बात यह है कि इस अध्याय में अर्जुन ने भगवान के कई नाम यूज किए, कई नाम आ रहे हैं भगवान के, और उन हर नामों की एक विशेषता है, उसमें एक संदेश है जो प्रभुपाद अपने पॉपर्ट में अपने तात्पर्य में एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो हम भगवान के नामों को देखेंगे, उनको समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि भगवान का नाम लेना ही भक्ति है। सो इंटरेस्टिंग होगा नहीं। सो इस पहले श्लोक के तात्पर्य में धृतराष्ट्र ने कहा, हे समझे, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। इसके तात्पर्य में श्री प्रभुपाद लिख रहे हैं, तात्पर्य पढ़ना चाहता हूं मैं थोड़ा सा। भगवद गीता एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है जो गीता महात्म्य में सार रूप में दिया हुआ है। प्रभुपाद सीधा पहली लाइन में लिख रहे हैं कि भगवद गीता आस्तिक विज्ञान है। आस्तिक विज्ञान मतलब थीस्टिक साइंस, मतलब प्रभुपाद ने पहली लाइन में ही भगवद गीता को रिलीजन और साइंस दोनों को फ्यूज कर दिया। नहीं, स्पिरिचुअल साइंस है, प्रभुपाद ये नहीं कह रहे सिर्फ रिलीजन है ये। जिसने भगवद गीता पढ़ी है उसको डेफिनेटली नहीं लगेगा कि रिलीजन है। रिलीजन मतलब आज के टर्म्स में, धार्मिक सेंस में, कि मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूं, मैं क्रिश्चियन हूं, हमारे अपने कोर्स एंड कंडक्ट्स हैं। जैसे अगर आप धर्मशास्त्र पढ़ोगे, कई शास्त्र टाइप के शास्त्र हैं, धर्मशास्त्र पढ़ोगे तो धर्मशास्त्र में हाँ दिया है भी ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय उनके क्या क्या ड्यूटीज हैं, ये सारी चीज एक्सप्लेन्ड है। तो ऐसा लगता है कि ठीक है, मतलब ये तो एक हिंदू धर्म है, नहीं सनातन धर्म है, जिसकी जिसके कार्य दिए हैं और इनको ऐसा करना है। भगवद्गीता में ऐसा कुछ नहीं है। भगवद्गीता में थोड़ा बहुत एक्सप्लेन्ड है क्षत्रिय ब्राह्मण शूद्र ये क्या, मगर वो साइंटिफिकली एक्सप्लेन्ड है, साइंस दिया उसके पीछे कि क्यों ये चार तरह के विभाजन किए गए हैं। भगवद्गीता में साइंस दी गई है कि हम भक्ति क्यों करें, हम भगवान की शरणागति क्यों लें, भगवद्गीता में क्यों आंसर कर रही है। और साइंस मतलब क्या, साइंस मतलब रैशनैलिटी तो होती है। अगर साइंस के का एक ब्रॉडर मीनिंग लो, अगर एक बड़ा मीनिंग लो साइंस का, तो उसका मतलब क्या है, रैशनैलिटी, लॉजिक। नहीं, रिलीजन लोग सोचते हैं फेथ, श्रद्धा। तो प्रभुपाद ने कहा नहीं, प्रभुपाद ने कहा भगवद्गीता रिलीजन और साइंस दो एक साथ, ये यूनिकनेस है भगवद्गीता की। प्रभुपाद ने सीधा यहां से शुरू किया है, जिसने भगवद्गीता पढ़ी है वो ये समझ जाएगा कि ये यूनिवर्सल बुक है। ये कोई एक सेक्ट को बिलोंग नहीं कर रही, क्योंकि आंसर दे रही है, लॉजिकल आंसर दे रही है हर चीज का। नहीं, शुरुआत ही वैदिक ऐसी हो कि तुम आत्मा और शरीर नहीं, और उसका भगवान लॉजिक दे रहे नहीं। सो कोई पूछे भगवदगीता क्या है, तो आप बता सकते हो ये भगवदगीता आस्तिक विज्ञान है। इसमें यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वह कृष्ण के भक्त की सहायता से संवीक्षण करते हुए भगवदगीता का अध्ययन करे और सर्वथा प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करे। ओके, अर्जुन ने मतलब भगवान कह रहे हैं कि भगवदगीता को कैसे पढ़ना है, भक्तों के साथ रहकर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान कृष्ण से गीता सुनी, उसका उपदेश ग्रहण किया, इस प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवदगीता में ही है। मतलब पॉइंट यह है कि भगवदगीता भगवान कह रहे हैं कि भक्तों से सुनो, भक्तों से नहीं सुनोगे तो क्या होगा, तो आपको या तो भगवदगीता रिलीजन लगेगी, हिंदू धर्म की किताब लगेगी, या भगवदगीता बिल्कुल साइंस लगेगी। कई लोगों ने अभी एक व्यक्ति है वो साउथ इंडिया में, उसने मुझे अपनी कमेंट्री भेजी भगवदगीता की, मतलब 35 ईयर्स 36 ईयर्स का यंग है, अभी मैरिड हुआ है। सो उन्होंने कहा कि आप प्लीज मेरी कमेंट्री पढ़ी, तो मैंने कहा मैं क्यों पढ़ूं। उसने कहा कि आपकी साइट देखी थी मैंने, साइंस इन वेदास और ये सब, बहुत अच्छे आर्टिकल्स थे, सो आप प्लीज उस पर कमेंट करिए। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने उसकी भगवदगीता की कमेंट्री पढ़ी और 2 पेज पढ़ के मेरा ऐसा दिमाग खराब हुआ मुझे लगा कि उसको उठा के फेंक दूं, मगर वो साउथ इंडिया में बैठा है, कुछ नहीं कर सकते। सो उसने क्या लिखा था भगवदगीता में, उसने लिखा था भैया देखो भगवदगीता में भगवान न्यूरोकेमिस्ट्री समझा रहे हैं, न्यूरोकेमिस्ट्री, ब्रेन, न्यूरोलॉजी, हार्मोन्स। सो मैंने कहा ये क्या लिख रहा है, तो मैंने देखा भगवदगीता, तो वो कहता है मोड ऑफ इग्नोरेंस आपका सीरोटोनिन है, मोड ऑफ पैशन डोपामाइन है, मोड ऑफ गुडनेस ग्लूटामेट है। और इस तरह से उसने पता नहीं क्या खिचड़ी पकाई है इसके अंदर। सो भक्तों से नहीं पढ़ोगे तो या तो ये बिल्कुल साइंस बन जाएगी, या क्या बन जाएगा, बिल्कुल रिलीजन, फेथ, अंधा विश्वास। नहीं, हमारी हिंदू धर्म की किताब है, आरएसएस, या ये लोग जो है पागल लोग, मतलब इनफैक्ट पागल ही है, निकर में घूमते रहते हैं, मतलब हिंदू कहते हैं और भगवदगीता पढ़ी भी नहीं उन्होंने, मतलब दैट्स द पॉइंट। गलत नहीं है निकर में घूमना, बट आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो और अपने को हिंदू कह रहे हो, आप ना आपने महाभारत पढ़ी है ना गीता पढ़ी, दैट्स द पॉइंट। सो इसलिए प्रभुपाद ने दूसरी लाइन ये लिखी है सीधा कि भगवदगीता किसकी सहायता से पढ़नी चाहिए, भक्तों की सहायता से, तब वो रिलीजन, तब वो स्पिरिचुअल साइंस लगेगी। अर्जुन ने जिस प्रकार साक्षात भगवान कृष्ण से गीता सुनी, उसका उपदेश ग्रहण किया, उस प्रकार स्पष्ट अनुभूति को उदाहरण भगवदगीता में ही है। सबको पता है ना पहले श्लोक का तात्पर्य पढ़ने, यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवदगीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो, तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ सकता है। प्रभुपाद कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं कि अगर आपने गीता समझ ली, दुनिया के सारे शास्त्रों को पीछे छोड़ सकते हो। मतलब गीता पढ़ ली तो आप दुनिया में कहीं भी जाकर डिबेट कर सकते हो, कोई क्वेश्चन ही नहीं है, किसी को भी हरा सकते हो, अभी गप नहीं है। प्रभुपाद ने करके ही दिखा दिया। प्रभुपाद की कन्वर्सेशंस पढ़ो, मॉर्निंग वॉक्स पढ़ो, प्रभुपाद गीता ही कोट कर रहे हैं सिर्फ। मतलब मैं भी प्रीचिंग करने आ रहा हूँ, मैं भी गीता ही बोलता हूँ। मैं पिछली बार मैं वहाँ पे गया था बॉस्टन में, तो वहाँ पे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का कोई आया हुआ था प्रोफेसर फिजिक्स का, 2-3 आए हुए थे, तो मैंने भगवदगीता बोला, मैंने बोला कि भगवदगीता कितनी साइंटिफिक है, ये बहुत इन्फ्लुएंस है, उन्होंने गीता खरीद ली। कह रहे थे मैं आता था मुझे तो सब ऐसे ही, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था क्या चल रहा है। भगवदगीता अच्छी तरह पढ़ो, प्रभुपाद कह रहे हैं भगवदगीता ही बस पढ़ो, भगवदगीता पढ़ो, भगवदगीता चलो, भगवदगीता बोलो, भगवदगीता खाओ, भगवदगीता सब कुछ कर डालो, यही होनी चाहिए आपके सपने में, जो व्हाटएवर इट इज, लॉ बुक है ना हमारी। पाठक को भगवदगीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेंगी, अपितु ऐसी बातें भी मिलेंगी जो अन्य शास्त्र में उपलब्ध। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है एक्चुअली, कि इसमें वो चीजें हैं जो सारे शास्त्र में, वो चीजें नहीं है जो सारे शास्त्रों में, वो चीजें भी हैं जो सारे शास्त्रों में नहीं है। यही गीता का विशिष्ट मानदंड है, प्रभुपाद कह रहे हैं यही गीता का स्टैंडर्ड है। सो गीता जब आप पढ़ोगे ना तो आपको ऐसी भी चीजें मिलेंगी जो जो और शास्त्रों में नहीं, जैसे उदाहरण के लिए जो और शास्त्रों में वो तो मिलेगा ही, जैसे आत्मज्ञान, भगवान ने आत्मज्ञान दिया वो तो उपनिषदों में है ही, कई श्लोक तो वर्बैटिम है, मतलब कई श्लोक तो सेम टू सेम हो रहे हैं, ऐसे कठोपनिषद में श्लोक है, रथ का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि घोड़े इंद्रियां है, लगाम मन है, और वो उसका ऑलमोस्ट वैसा ही श्लोक गीता में भी है कि इंद्रियों से ऊपर मन है, मन से ऊपर बुद्धि है, बुद्धि से ऊपर अहंकार, उससे ऊपर आत्मा है, कई श्लोक तो बिल्कुल सेम टू सेम है। और कुछ ऐसा भी ज्ञान है जो और शास्त्रों में नहीं है, जैसे अवतार का कॉन्सेप्ट, अवतार का कॉन्सेप्ट उपनिषदों में नहीं है कि भगवान अवतार लेके, ईश्वर इस संसार में अवतार लेके आते हैं उसी रूप के अंदर, उसी रूप में, वो नहीं है, वो भी है इसके अंदर, तो आप देख रहे हो वो भी है जो नहीं है, वो भी है जो है, यही गीता का स्टैंडर्ड है। स्वयं भगवान कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चरित होने के कारण ये पूर्ण नास्तिक विज्ञान है, और स्वयं भगवान ने बोली है, बाकी सारे शास्त्र तो व्यासदेव ने रचना की है मगर ये स्वयं भगवान ने बोली है। ओके, प्रभुपाद यहाँ पे भगवद्गीता की इंपॉर्टेंस बता रहे हैं फर्स्ट श्लोक में, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं और मैं सारे श्लोक नहीं पढ़ रहा हूँ, आप देख लो कि दुर्योधन द्रोणाचार्य में बात हो रही है, सब लोग युद्ध में आमने सामने खड़े हैं, वो एक्सप्लेनेशन है, वहाँ कौरव खड़े हैं, पांडव खड़े हैं और कृष्णा खड़े हैं उनके साथ, अर्जुन के साथ। अब हम इस श्लोक पे आ जाएंगे, नेक्स्ट श्लोक पे, श्लोक नंबर आई जस्ट टेल यू, गो अपने घर जाके आप ये सब पढ़ लेना दोबारा से जाकर, और लेट्स सी, ओके श्लोक नंबर 15, पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दद्मौ महाशंकम भीमकर्मा बिरकोदरा। तो मैंने बताया था गीता में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, भगवान के नाम जो यूज कर रहे हैं अर्जुन, आफ्टर ऑल हमने हमें नाम से मतलब है नहीं, हमें युद्ध से तो ज्यादा मतलब नहीं है, युद्ध से इसलिए मतलब है क्योंकि कृष्ण है, और कृष्णा में हमें क्या मतलब है सबसे ज्यादा, उनके नामों से, नहीं चैतन्य महाप्रभु का यही मत है, परम विजयते श्री कृष्णा संकीर्तन, और इसलिए प्रभुपाद भगवान के हर नाम को डिटेल्स में एक्सप्लेन कर रहे हैं तात्पर्य में। सो नाम से क्या मतलब है हमें, इसमें कौन सा शब्द इस्तेमाल हो रहा है, ऋषिकेश, ऋषिकेश, भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया, भगवान का नाम का इस्तेमाल करें ऋषिकेश, प्रभुपाद सीधा इसमें भगवान का नाम डिस्कस करने, इस श्लोक में भगवान कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया क्योंकि वह ही समस्त इंद्रियों के स्वामी है। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि यहां पर अगर आप पर्पट पढ़ोगे तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि अर्जुन ने भगवान को ऋषिकेश इसलिए कहा क्योंकि अर्जुन सोच रहा था कि यहाँ कुरुक्षेत्र के उद्भूमि में भगवान कृष्ण अर्जुन की दिव्य इंद्रियों को निर्देशन करते हैं इसलिए उनको ऋषिकेश कहा गया। अर्जुन एक्चुअली चाहता था कि भगवान उसको गाइड करें इस युद्ध में, है नहीं, रथ भी चला रहे ना, सो भगवान उसको युद्ध में उसको प्रोटेक्शन दें, उसको गाइड करें, इसलिए अर्जुन क्या बोल रहा है भगवान को ऋषिकेश, क्योंकि उसको पता है कि भगवान की गाइडेंस के बिना ये युद्ध नहीं जीत सकते। ऑफकोर्स जब दुर्योधन और अर्जुन मिलने गए थे कृष्ण के पास तो दुर्योधन ने क्या मांगा था, आगे सेना मांगी थी, और जबकि कृष्ण ने बोला अर्जुन मैंने शपथ लिया कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, अभी भी सोच लो, अर्जुन ने फिर भी किसको मांगा, कृष्ण को, क्योंकि अर्जुन को भगवान की गाइडेंस पे पूरा फेथ है, इसलिए अर्जुन भगवान को कह रहे ऋषिकेश। ओ सॉरी, हाँ नहीं संजय बोल रहे,
संजय बोल रहे तो।
भगवान कृष्ण, हाँ ये संजय बोल रहे हैं, हाँ ठीक है ठीक है, नहीं संजय भगवान को क्या बोल रहे हैं ऋषिकेश, आइडिया ठीक है संजय बोल रहे हैं, आइडिया ये है कि भगवान का नाम ऋषिकेश क्यों इस्तेमाल किया गया है। ऑफ कोर्स आई मीन टू से ऋषिकेश इसलिए किया गया कि अर्जुन भगवान अर्जुन की तरफ से बोल रहे हैं, अपनी तरफ से नहीं बोल रहे कि अर्जुन सोच रहा है कि भगवान को गाइड करें। और फिर उसके बाद ये सबसे पहला नाम यूज किया है भगवान का गीता में, ऋषिकेश, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड। और फिर उसके बाद यहाँ पर अब हम आगे चलेंगे, भगवान का और कौन सा नाम यूज कर रहे हैं, मधुसूदन का है, इसी पपट में मधुसूदन, हाँ उन्हें तो इसमें मधुसूदन कहाँ कहाँ गया, इसमें तो कहीं नहीं है, हरे कृष्ण कुछ नहीं है। सो 21st और 22nd श्लोक में भगवान का एक नाम यूज किया, सेनियोर उभय और मध्य रथम स्थापे में अच्युत है, दूसरा नाम यूज किया अच्युत यहां पर, और अच्युत की यूज कर रहे हैं भगवान। अब इसके पॉपर्ट में बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है कि अच्युत की यूज कर रहे हैं अर्जुन, 21st श्लोक है। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो, जिससे मैं यहां उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिसने मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। अच्युत क्यों कह रहे हैं यहां पर, प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि यदि भी कृष्ण साक्षात भगवान कृष्ण थे किंतु वह अहितु की कृपावश अपने मित्र की सेवा में लगे हुए थे। अच्युत का मतलब यही है, भगवान अपने भक्तों की सेवा करते हैं। च्युत का मतलब होता है गिरना, अच्युत मतलब जो कभी गिरता नहीं। भगवान अर्जुन के क्या बने, सारथी। तो सारथी तो पोजीशन नीचे होती है ना, बहुत मतलब कैसी पोजीशन है, मगर फिर भी भगवान सारथी बनते हुए अपनी पोजीशन से नीचे नहीं गिरे। भक्त अगर भगवान की सेवा करता है तो भगवान भी भक्त की सेवा करते हैं, और भगवान जब भक्त की सेवा करते हैं तो कोई भगवान को सेवक नहीं कहता, भगवान को क्या बोलता है, कृपा के सागर है, उल्टा बोलते हैं बल्कि। सो भगवान अपनी पोजीशन से नीचे नहीं करे, भगवान भगवान ही है। सो भगवान, हम सोचते हैं कि भगवान कृपा दे रहे हैं, भगवान सोचते हैं कि मैं अपने भक्त की सेवा कर रहा हूं, वो अपने मन में नहीं सोचते कि मैं कृपा दे रहा हूं उसको। भगवान अगर, भगवान सबसे दीन व्यक्ति कौन है संसार में, इस संसार में क्या पूरे सबसे दीन कौन है, कृष्णा। कृष्णा से दीन कौन हो सकता है, उनसे कंपटीशन थोड़े ना कर सकते हैं। सबसे अहंकारी कौन है, कृष्णा। हम कुछ भी नहीं है, प्रभुपाद कहते हैं दोनों ही है, नहीं सबसे टॉप मोस्ट हर चीज में कौन है, कृष्णा। सो कृष्णा कभी नहीं समझते कि मैं कृपा दे रहा हूं, कृष्णा में सारे अच्छे गुण है, नहीं वो अहंकार, गंदा वाला अहंकार नहीं है। भगवान को किस बात का अहंकार है, अच्छा अहंकार है। भगवान को किस बात का अहंकार है, क्या है गंदा अहंकार, क्या होता है गंदा अहंकार, होता है कि मैं टॉप मोस्ट हूं। अच्छा अहंकार क्या, भगवान को इस बात का अहंकार है कि मैं अपने भक्तों का सेवक हूं, स्वामी नहीं हूं। वो तो गंदा अहंकार हो गया, मैं अपने भक्तों का सेवक हूं। भगवान ने भागवतम में कितनी बार बोला है कि मेरे भक्त सदैव मेरे हृदय में रहते हैं और मैं सदैव अपने भक्तों के हृदय में रहता हूँ। क्या श्लोक है वो भागवतम का, एनीवे भूल गया मैं, नहीं भागवतम का सोच रहा था मैं, भागवतम में तो है ही। हाँ, सो भगवान हमेशा सोचते हैं कि मैं अपने भक्तों का सेवक हूँ, ये अहंकार है। भक्तों को क्या अहंकार है कि मैं हमेशा मैं कृष्ण का सेवक हूँ, ये अच्छा अहंकार है, अच्छा अहंकार है, नहीं है न। हम कृष्ण कह रहे हैं कि मैं अपने भक्तों के सिवाय कुछ नहीं जानता, न हम जानामी, अम्बरीश महाराज के लिए कह रहे हैं, क्योंकि वो सदैव मेरे हृदय में वास करते हैं और मैं सदैव उनकी सेवा के बारे में सोचता रहता हूं। और प्रभुपाद अपनी अगली लाइन में सीधा लिख रहे हैं, देखो क्या लिख रहे हैं, वह अपने भक्तों पर स्नेह दिखाने में कभी भी नहीं चूकते, इसलिए अर्जुन ने उन्हें अच्युत किया। अच्युत मतलब होता है, अच्युत के दो मतलब बता रहे हैं भगवान या प्रभुपाद, एक मतलब है जो अपनी पोजीशन से गिरता नहीं, गिरता नहीं। सो भगवान सेवक बन के भी सेवक नहीं कहलाएंगे, उनको भगवान ही कहेंगे। सेवक बन के नहीं करेंगे, सेवा कर रहे हैं। सेवक बन जाएंगे तो लोग नहीं कहेंगे सेवा कर रहे हैं, सेवक बन जाएंगे तो लोग कहेंगे कृपा कर रहे हैं अपने भक्तों पे। और दूसरा मतलब अच्युत का है कि जो कभी चूकता नहीं, जो भी गिरता नहीं, जो कभी सेवा करने का मौका कभी भी छोड़ेगा नहीं, सेवा करने से कभी भी गिरेगा नहीं, अपने स्टैंडर्ड से नहीं गिरते भगवान। भगवान का स्टैंडर्ड है कि अपने भक्तों की सेवा करके वो रहेंगे। भगवान अपने भक्तों की सेवा का अवसर ढूंढते रहते हैं और कभी नहीं चूकते, समझे। और किन भक्तों की सेवा करते हैं, जो भक्त उनकी सेवा करते हैं, है नहीं। जो भक्त अपने प्लान से पड़े रहेंगे तो भगवान भी प्लानिंग करते रहेंगे अपनी, और क्या करेंगे। जैसे यह था माम प्रबदंते ताम सते भजामि हम, इसलिए भगवान का सबसे पहले नाम क्या इस्तेमाल किया था, ऋषिकेश। भगवान उनकी इंद्रियों को गाइड करेंगे, उनकी इंद्रियों को कंट्रोल करेंगे जो भगवान की सेवा करेंगे, वो भगवान की तरफ से सेवा है, मैं तुम्हारी इंद्रियों को अपनी तरफ खींच लूंगा। इसलिए ऋषिकेश का मतलब तभी है जब अच्युत का मतलब समझोगे, तभी ऋषिकेश के बाद कौन सा सीधा नाम इस्तेमाल हुआ है, अच्युत। इस सीक्वेंस भी इंपॉर्टेंट है भगवान के नाम के, अभी मैं बता दूंगा कैसे चल रहा है, सीक्वेंस भी इंपॉर्टेंट है। अगर हम अच्युत का नाम नहीं समझेंगे तो ऋषिकेश हम नहीं समझ सकते, वो काम ही नहीं करेगा। आप कहोगे भगवान को ऋषिकेश कह रहे हैं, वही काम वासना बनी पड़ी रहेगी आपकी इंद्रियों में, आप करते रहो कोशिश कंट्रोल करने की, नहीं कर सकते। क्यों नहीं हो रहा जबकि भगवान को ऋषिकेश बोला है, भगवान सारे इंद्रियों कंट्रोल करने वाले स्वामी है, आप कहोगे कंट्रोल तो कर रहे हैं मगर हो ही नहीं रहा, क्योंकि आपने दूसरा नाम नहीं समझा, क्या अच्युत। अच्युत का मतलब क्या है, जिस प्रकार भगवान किसी सेवा करने में चूकते नहीं भक्तों की, उसी प्रकार हम भी भगवान से सीख सकते हैं कि हम भी भगवान की सेवा करने में चूके नहीं, भगवान की सेवा का अवसर छोड़ो मत, दैट्स इंपॉर्टेंट। अगर आप भगवान की सेवा का अवसर छोड़ते रहोगे तो भगवान भी आपको छोड़ देंगे, जब सेवा आएगी आपने अवसर छोड़ दिया, जब माया आएगी ना तो भगवान भी आपको छोड़ देंगे, वैसे बहुत अच्छा चलता रहेगा। वैसे आप सब लेक्चर में बैठे ही हो, कुछ नहीं हो रहा आपको, मगर जब माया आएगी तब ऐसी काम वासना आएगी घुमा देगी आपको, आप कहोगे भगवान ने बचाया क्यों नहीं मुझे, भगवान कहेंगे बेटे जब मेरी सेवा का अवसर आया था तूने भी तो छोड़ा था, जब इम्पोर्टेंट पॉइंट आया सेवा का तब तूने छोड़ दिया, अब जब इम्पोर्टेंट पॉइंट तेरी लाइफ में आया माया का तो मैंने तुझे छोड़ दिया, कर लो। इसलिए फॉल डाउन होता ही इसलिए है, इसलिए ये दोनों लाइन इतनी इंपॉर्टेंट है कि मतलब पूरी बुक लिख सकते हैं इस पर। फॉल डाउन होता ही इसलिए क्योंकि, इसलिए नहीं क्योंकि हम भगवान की सेवा नहीं कर रहे, इसलिए हम भगवान क्योंकि हम भगवान की सेवा का अवसर छोड़ देते हैं, इसलिए कर्ण की तरह समय आने पर भूल जाएंगे, सब कुछ भूल जाएंगे, सब कुछ भूल जाएंगे। वैसे बहुत अच्छा चलता रहेगा मगर एक दिन आप गंदी चीज देखोगे माइंड आउट पूरा, और फॉल आप कहोगे भगवान ने बचाया है नहीं यार, वो सबको अच्छा चल रहा था, मैं तो एक सेकंड पहले सेवेंथ गोस्वामी था, अब क्या हो गया, अब मैं छुल्लक बन गया। होता है नहीं ऐसा, एक सेकंड बहुत मन लगता है और दूसरे सेकंड बिल्कुल आउट, यही होता है ना। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आप भी तो भगवान का यही कर रहे हो, सेवा कर रहे हो कभी, और जब मेन सेवा का अवसर आया तब भाग गए, सो गए, कहाँ थे भैया, भूल गया, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। अगर आप भगवान की सेवा की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे तो भगवान भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेने वाले, बस नहीं लेने वाले। तभी मुझे गुस्सा आया था जब उसका साउंड सही नहीं हुआ था अमरपाली का, क्योंकि आप, क्योंकि सेवा तो चल रही है मगर जब सेवा का अवसर आया तब आप चुक गए। मेन पॉइंट तो तभी था ना, जब भी प्रोग्राम हो रहा है, लेक्चर हो रहा है, उस टाइम ही तो जरूरत है साउंड की, मेन, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तभी मैंने कहा यार ये तो सेवा से चूक ही गए, सेवा से आप चूकोगे तो फिर भगवान भी आपको बताएंगे कि क्या होती है माया। सो भगवान बदला नहीं ले रहे बट भगवान सिखा रहे हैं आपको कि रिस्पॉन्सिबल बनो, सर्विस में रिस्पॉन्सिबल बनो। तो दो लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए अच्युत, प्रभुपाद के प्रॉपर्ट्स में प्रभुपाद ने सब कुछ लिखा है, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे ना तो बहुत कुछ आ जाएगा हाथ में, ठीक है नहीं, ठीक है। सो अच्युत इसलिए कह रहे हैं या ये पॉपर्ट हो गया एनीवे, ओके। और इस पॉपर्ट में प्रभुपाद ये भी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भग्य अर्जुन लड़ने से मना क्यों कर रहा था, दूसरा क्वेश्चन है ना हमारा, लड़ने से मना क्यों कर रहा था। हम सोच रहे हैं कि अर्जुन लड़ने से मना कर रहा है क्योंकि बहुत रीजंस आएंगे ना फर्स्ट चैप्टर में कि भी मैं सबको मार दूंगा तो स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, उसके बाद श्राद्ध कौन करेगा, पिंडदान कोई करने वाला नहीं होगा, और क्या रीजन से कि अगर सब मर जाएंगे तो राज्य कोई होगा ही नहीं, इतना खून खराब हो जाएगा बेकार में, मेरे छोटी सी इच्छा के लिए नहीं, एक राज्य के लिए हमने इतना खून खराब कर दिया, हो क्या रहा है। कृष्ण अर्जुन के माइंड में कोई लॉजिक सेट हो नहीं रहता, और ऊपर से भीष्म पितामह द्रोणाचार्य ऐसे पिता माता गुरु को मार रहे हैं हम, और इतना बड़ा पाप लग गया, किसने मारा हिस्ट्री में आज तक अपने पिता को, अपने गुरु तुल्य व्यक्ति को। मगर प्रभुपाद यहां पे लिख रहे हैं कि अर्जुन युद्ध करने वो मेन रीजन नहीं था, वो रीजंस थे, वो सेकेंडरी रीजंस थे, बहुत अर्जुन सोच रहा है धर्म की हानि होगी, जो भी अपने मन से सोच रहा है, लिस्ट बना दी। मेन रीजन वो नहीं था। मेन रीजन क्या अर्जुन के ना लटने का, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इसी के तात्पर्य में, 21-22 श्लोक के तात्पर्य में, सेकंड पैराग्राफ देखो। भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण अर्जुन को अपने बंधु मांधवों से युद्ध करने की तनिक भी इच्छा न थी। शुद्ध भक्त था ना वो, क्योंकि दुर्योधन द्वारा शांतिपूर्ण समझौता न करके हठ धर्मिता पर उतारू होने के कारण उसे युद्ध भूमि में आना पड़ा। तो सबसे पहली बात है कि अर्जुन शुद्ध भक्त है, इसलिए उसकी युद्ध करने की इच्छा नहीं थी। उसके हृदय में क्या था, करुणा थी। अब करुणा थी वो भी आगे एक्सप्लेन हो जाएगा। आप क्वेश्चन कर सकते हो यार ये तो मतलब नॉर्मल आदमी की तरह बात कर रहे हैं, नहीं अर्जुन में, अर्जुन केवल आसक्ति की वजह से नहीं कह रहा कि मेरे भाई बांधव है या धर्म नष्ट हो जाएगा, ये सारे लॉजिक है। लॉजिक से पहले उसके हार्ट में करुणा है, वो अच्छा व्यक्ति है, बेसिकली बैड एलिमेंट नहीं है जो दुर्योधन है। तो अच्छे व्यक्ति में तो अच्छी क्वालिटीज आनी जाती नहीं, अपने आ जाती है ना, नेचुरली वो चाहेगा कि इतना खून, इतने लोग क्यों मरे। मतलब एजेंडा हमारा है, दुर्योधन और मेरा, उसके लिए करोड़ों लोग मर गए, ये कोई सेंस नहीं, बैटरी नहीं, जिनको कुछ लेना देना नहीं है इस चीज से, इतने सारे सैनिक, इतने सारे हाथी घोड़े, वो क्यों मरे। तो ही इज अ गुड मैन। तो एक कारण ये है, इसलिए लॉजिक्स दो चीजें होती है, एक लॉजिक होता है, एक नेचर होती है। नहीं, एक गंदे आदमी के पास भी लॉजिक आते हैं, एक अच्छे आदमी के पास भी लॉजिक आते हैं। जब गंदे आदमी के पास लॉजिक आते हैं ना, तो उस लॉजिक क्या होते हैं, कैसे लॉजिक होते हैं, लॉजिक तो लॉजिक है, 1+1=2 ही है। एक गंदा आदमी 1+1=2 बोलेगा, अच्छा आदमी 1+1=2 बोलेगा। जब गंदा आदमी 1+1=2 बोलेगा तो बोलेगा कि ये 1 है ये 1 है, दोनों को गोली मार दो। लॉजिक तो 1+1=2 ही आई। अच्छा आदमी 1+1=2 बोलेगा कि ये 1 है ये 1 है, दोनों को छोड़ दो। तो आप समझ देख रहे हो, आप लॉजिक से आप डिसाइड नहीं कर सकते क्या अच्छा है क्या बुरा है। आप देख रहे हो क्या चल रहा है यहाँ पर, दुर्योधन भी अपना लॉजिक दे रहा है। अभी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ो, शुरू में दुर्योधन ने भी लॉजिक दिया भीष्म को जाकर कि यार इतने सारे लोग खड़े हैं और भीष्म पितामह आप पूरी तरह अच्छी तरह लड़ना, मतलब आप उनके अटैचमेंट की ऐसे अपनी अपनी लड़ाई कम मत कर देना। आप तो चाहते हो अर्जुन को, मैं जानता हूं, मगर आपको हमारी पूरी प्रोटेक्शन करनी पड़ेगी क्योंकि आप हमारे सेनापति हो। दुर्योधन के भी लॉजिक थे, मगर दुर्योधन के लॉजिक गलत रिजल्ट में ला रहे थे, है नहीं। अर्जुन के लॉजिक सही फल ला रहे हैं। लॉजिक से आप डिसाइड नहीं कर सकते क्या क्या सही है क्या गलत है। आपको पहले से अच्छा व्यक्ति होना चाहिए, समझे, तब आपका लॉजिक सही डायरेक्शन में जाएगा। तो अर्जुन अच्छा व्यक्ति था, इसलिए उसने कहा भगवान मैं नहीं लड़ूंगा। क्यों? क्योंकि उसके हृदय में करुणा थी। उसका लॉजिक कह रहा था, ये नहीं कह रहा था कि धर्म नष्ट हो जाएगा, जो भी हो जाएगा, वो चीजें थी अर्जुन में, धार्मिक भी है। मेन चीज थी कि यार इतने लोग क्यों मरे हमारे एजेंडा के लिए, अच्छा आदमी है नहीं है। दुर्योधन उल्टा सोच रहा है, भैया हम लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे, हमारा सैनिक है उनको मरना ही चाहिए, हमारे नौकर है वो हमारे लिए नहीं मरेंगे तो किसके लिए मरेंगे, हमारा नमक खाया उन्होंने। वो बिल्कुल उल्टा सोच रहा है। सो एक कारण यह है कि उसके हृदय में करुणा है। मगर कोई क्वेश्चन उठा सकता है कि जो करुणा है अर्जुन के हृदय, ये तो नॉर्मल मंडेन चीज चल रही है ना, है नहीं। अर्जुन तो भक्त है, एक अच्छा आदमी भी, जैसे मान लीजिए रियूष भी होता, रियूष भी कहता क्यों मारे हम किसी को, क्यों कहता नहीं छोड़ो यार। अफकोर्स वो डर के भी कहते हैं, अर्जुन डर नहीं रहा। कोई भी अच्छा आदमी कहेगा यार क्यों मारे हम इतने लोगों को अपने लिए, मतलब एक हमारी फैमिली की लड़ाई है, उसके लिए इन लोगों क्यों मारे। तो करुणा बहुत ही एक साधारण आदमी की लग रही है, मगर साधारण आदमी की करुणा नहीं है। करुणा क्या है, ये साधारण है या आध्यात्मिक है, ये हमें डिसाइड करना है, है नहीं। अब प्रभुपाद इसको भी एक्सप्लेन करेंगे आगे, आप देखना गीता में आएगा। समझ मेरे क्वेश्चन समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। एक साधारण करुणा होती है, एक साधारण करुणा तो हम सब में भी है। आध्यात्मिक करुणा भगवान से संबंधित होती है, उसका मतलब क्या है वो आ जाएगा अभी मैं बताऊंगा क्या है। सो ये थोड़ी इंडिकेशन आ गई कि अर्जुन क्यों युद्ध नहीं करना चाहता, वो रीजन बाद के रीजन पहले ये। ओके सो अब आगे आगे कहां जाएं हम। ओके इसमें 24 श्लोक में आ जाओ। 24 श्लोक में अर्जुन का एक नाम बोल रहे हैं, संजय गुड्डाकेश। गुड्डाकेश का मतलब क्या है, प्रभुपाद लिख रहे हैं 24 श्लोक में, एवं मुक्तो ऋषि केशो गुड्डा केशेन भारत सेनो रघुवर मध्य स्थापित रथम उत्तम। प्रभुपाद लिखने तात्पर्य में इस श्लोक में अर्जुन को गुड्डा केश कहा गया है, गुड्डा केश का अर्थ है नींद, जो नींद को जीत ले उसे कहते हैं गुड्डा केश। जो नींद का अर्थ अज्ञान भी होता है, प्रभुपाद लिख रहे जो अज्ञान को जीत ले उसको भी गुड्डा केश कहते हैं। अर्जुन ने दोनों को जीत लिया, नींद को भी और अज्ञान को भी। तो उसका मतलब क्या नींद और अज्ञान को जीतने का, कृष्ण के भक्त के रूप में वह कृष्ण को क्षण भर भी नहीं भूल पाया, क्योंकि भक्त का स्वभाव ही ऐसा होता है। यहां तक कि चलते सोते हुए भी कृष्ण के नाम रूप गुणों तथा लीलाओं के चिंतन से भक्त कभी भी मुक्त नहीं रह सकता। सो ज्ञानी मुक्ति चाहते हैं, मुक्ति नहीं चाहते, वो तो कृष्ण से भी मुक्ति चाहते हैं। हाँ भैया, पहले कृष्णा कृष्णा बोलो, फिर कृष्णा नाम भी छोड़ दो और निराकार में लीन हो जाओ, इसलिए भक्त मुक्ति नहीं चाहते। हम थोड़े ना मुक्ति चाहते हैं भगवान से, हम तो बल्कि और, हम तो और बंधन चाहते हैं। सो अर्जुन चलते हुए जागते हुए सोते हुए कभी भी कृष्ण को नहीं भूलता था, इसलिए उसका नाम क्या है, गुड्डाकेश, इसलिए उसका नाम गुड्डाकेश है। और फिर उसके बाद ये एक अर्जुन का नाम इस्तेमाल हुआ है। और फिर उसके बाद ओके 28 श्लोक पे आ जाओ। और 28 श्लोक में, अब इस श्लोक में प्रॉपर तात्पर्य में लिख रहे हैं कि अर्जुन की करुणा कैसी थी। अर्जुन की करुणा की बात कर रहे थे हम, या आध्यात्मिक थी या भौतिक थी। अर्जुन की करुणा ऐसी तो नहीं है जैसे और लोगों की होती है, बेचारे को माफ कर दो, वो तो माया है। हमें ना अच्छे से लेना देना है ना बुरे से, हम तो सेवक हैं। मगर अर्जुन की करुणा कैसी है, तो इस 28 श्लोक में लिख रहे हैं, अर्जुन ने कहा हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। इस श्लोक को पढ़ के ऐसा लगता है कि अर्जुन सोच रहा है कि मेरे जैसे नॉर्मल आदमी नहीं होता कि भी हमारे रिलेटिव्स मर जाएंगे तो इस फिर क्या कैसे होगा, क्या होगा, मतलब मेरे ही चाचा ताऊ सब सामने खड़े हैं। मगर ऐसी बात नहीं है, अर्जुन आसक्त नहीं है इन लोगों से। अर्जुन, प्रभुपाद लिख रहे हैं अर्जुन का मुंह क्यों सूख रहा है, क्योंकि अर्जुन में करुणा है। और करुणा क्यों है, अब आप देखो यहां पे क्या लिख रहे हैं प्रभुपाद। प्रभुपाद लिख रहे हैं यहां पर तात्पर्य में लिख रहे हैं, यथार्थ भक्ति से युक्त मनुष्य वे सारे सद्गुणों रहते हैं जो सत्पुरुषों या देवताओं में पाए जाते हैं, जबकि अभक्त अपनी शिक्षा तथा संस्कृति के द्वारा भौतिक योग्यताओं में चाहे कितना ही उन्नत क्यों ना हो उनमें ईश्वरीय गुण से विहीन होते हैं। लिख रहे हैं भौतिक गुण और ईश्वरीय गुण, आ गया नहीं आ गया पहली लाइन में, मेरा मेला नहीं मिला आप लोगों को, या ढूंढ ही रहे हो अभी गुणों की बात छोड़ दो, आपको मिल गया लाइन मिल गया सबको। भौतिक योग्यताओं में उन्नत हो सकते हैं मगर ईश्वरीय गुण से विहीन होते हैं। इसे दो तरह के गुण है, एक भौतिक गुण एक ईश्वरीय गुण। भौतिक गुण में भी करुणा होती है, ईश्वरीय गुण भी करुणा होती है, मगर दोनों में बहुत अंतर होता है। क्या अंतर है, अंतर यह है कि श्रील प्रभुपाद कोट कर रहे हैं यहां पर, प्रभुपाद लिख रहे हैं आप लाइन ढूंढ लो, अर्जुन में ऐसे लक्षण किसी दुर्बलता के कारण नहीं अपितु हृदय की कोमलता के कारण थे, जो भगवान के शुद्ध भक्त का लक्षण है। श्लोक कोट कर रहे हैं आप, ऐसे भक्तिर भगवती कंचना, जो देवताओं में गुण होते हैं वो सारे भक्तों में अपने आप आ जाते हैं, जो भक्त नहीं उनमें कैसे कोई गुण अच्छे हो सकते हैं। कहने का मतलब है कि अर्जुन का गुण कैसे है, करुणा का ईश्वरीय गुण है। और श्रील प्रभुपाद अपने श्रील प्रभुपाद अपने नेक्टर ऑफ डिवोशन में चैप्टर 47 में ये एक्सप्लेन कर रहे हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं कि करुणा एक ईश्वरीय गुण है जो भक्तों में होता है। उसका मतलब क्या है, जो साधारण आदमी में करुणा है और भक्तों की करुणा में क्या अंतर है, यही क्वेश्चन चल रहा है ना। सो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि करुणा क्या है, जब ईश्वरीय करुणा क्या है, जब जब भगवान से संबंधित होकर करुणा होती है तो उसको क्या बोलते हैं, ईश्वरीय करुणा। जब भगवान से संबंधित होकर किसी को दुख होता है और उस दुख के कारण करुणा आती है उसको ईश्वरीय करुणा कहते हैं। जब इस संसार से या अपने से संबंधित होकर दुख होता है और फिर करुणा आती है तो उसको क्या बोलते हैं? भौतिक करुणा, संसारिक करुणा। यही है ना, आपने किसी गरीब को देखा होगा बेचारा, ठीक है, दैट्स ओके, आप उसको बेचारा कह रहे हो, माया आपको बेचारा करे, बेचारा अभी जन्म इतने फंसा पड़ा है, व्हाट्स द पॉइंट। आप जेल में किसी को रोटी खिला दो, ठीक है, अच्छा है, व्हाट्स द पॉइंट, अभी भी क्या हो, कैदी तो हो, तो आपने बेचारा अपने रोटी खिला दी कैदियों को, तो आप तो कहोगे बेचारे, वो सैनिक होंगे वो क्या कह रहे होंगे, पहरेदार बेचारा क्या कर रहा है यार, अभी फंसा पड़ा है, अभी पीटेंगे हम इसको यही है ना, जेल में तो पीटेंगे। सो ये भौतिक करुणा है, समझे, इसको भौतिक करुणा है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, अल्टीमेटली कोई वैल्यू नहीं है, एक छोटे स्केल पे हो सकती है बहुत, अल्टीमेटली कोई वैल्यू नहीं है। आप पर्पस ही नहीं समझ रहे लाइफ का, ये तो वही बात हो गई कि एक कुत्ता दूसरे कुत्ते पे करुणा कर रहा है, अब है तो जानवर ही ना, अब वो पर्पस ही नहीं समझ रहा कि लाइफ का पर्पस क्या है। आप क्या उसको बड़ाई करोगे, कुत्ते की बड़ाई करोगे, अगर एक कुत्ता दूसरे कुत्ते की हेल्प कर रहा हो, बड़ाई करोगे उस कुत्ते की, आप कहोगे यार कुत्ता ही है। और ईश्वरी करुणा क्या, ईश्वर करुणा का प्रभुपाद एग्जाम्पल दे रहे हैं चैप्टर 47 एक्ट ऑफ डिवोशन में। ईश्वरीय क्रोध भी होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हनुमान जी का, हनुमान जी ने क्रोध किया नहीं किया लंका पे, मगर किसके लिए किया, राम के लिए, अपने लिए नहीं। ऐसे ईश्वरीय करुणा अर्जुन किसके लिए कर रहा है, कृष्ण के लिए कर रहा है, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा कैसे हो रहा है, मगर ईश्वरीय करुणा क्या है, प्रभुपाद एग्जाम्पल दे रहे हैं। ईश्वरीय करुणा क्या है, जैसे एग्जाम्पल है, जब कालिया नाग को देखा, भगवान को देखा कालिया नाग पे बैठे हुए, सो भगवान को कालिया नाग ने पकड़ लिया, पूरा 6 घंटे तक भगवान कालिया नाग के चुंगुल में पड़े रहे, और ऐसा लग रहा था कि भगवान सारे देवी तब भी बहुत दुखी हो गए, ओ कृष्णा को पकड़ लिया, कृष्णा कुछ नहीं कर रहे थे 6 घंटे। ब्रजवासियों ने भी देखा कृष्ण को, कृष्ण ऐसे बेहोश पड़े थे, उन्होंने कहा हाय कृष्ण को क्या हो गया, तो ये दुख क्यों हो रहा है, किसको देख के हो रहा है, भगवान को, करुणा किस पे आ रही है, भगवान पे, क्यों, क्योंकि जब भगवान को देख के दुख होता है भक्त को, तो भक्त भूल जाता है कि ये भगवान है थोड़े टाइम के लिए, नहीं, जैसे माँ अगर अपने बच्चे को देख के दुख होगी तो भूल जाएगी प्राइम मिनिस्टर है जो भी है, अगर उसका बच्चा प्राइम मिनिस्टर होगा या बड़ा कमांडर होगा, मान लीजिए उसका बच्चा ब्रिगेडियर है, तो माँ उसको देखेगी अगर बीमार हो गए तो दुख दुख होगा ना उसको, दुख में भूल जाएगी ब्रिगेडियर है, उन्होंने सोचते रहे कि ब्रिगेडियर है, वो भी भूल लगा कि ये साधारण स्त्री है, नहीं, सो दुख में, दुख शोक में व्यक्ति भूल जाते हैं, नहीं, संसार में ऐसे होता है ना, शोक में भूल जाते हैं ना सिचुएशन को, इसलिए भगवान से संबंधित शोक होता है तो सिचुएशन भूल जाता है भक्त कि भगवान है और मैं भक्त हूँ, वो सिर्फ ये सोच रहा है कि हाय कृष्ण का अब क्या होगा, मतलब ये तो हमारे कृष्णा तो फंस गए वहां, तो इसलिए डिवोटीज को भगवान पे करुणा आ रही है, देवी देवताओं को भगवान पे करुणा आ रही थी, स्पेशली ब्रजवासियों को, और उस करुणा को क्या बोलते हैं हम, ईश्वरीय करुणा। ये एक एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल शंखचूड़ का, शंखचूड़ था ना, उसने क्या किया था, शंखचूड़ ने भगवान की गोपियों को अटैक किया था, डीमन था, डीमन कंस ने भेजा था शंखचूड़ को, तो शंखचूड़ आया, भगवान की रासलीला हो रही थी, कृष्ण और गोपियां और बलराम जी भी थे वहां घूम रहे थे ऐसी, तो शंखचूड़ ने कहा मैं कृष्ण की गोपियों को चुरा के ले जाऊंगा, और फिर उसके बाद जब कृष्ण आएंगे मेरे पास छुड़ाने के लिए तो मार दूंगा उसको, तो उसका प्लान था अपना कुछ, तो उसने गोपियों को अटैक किया, और बलदेव जब बलराम जी ने देखा कि शंखचूड़ भगवान की गोपियों को ले जा रहे, तो भगवान को बहुत दुख हो रहा था, भगवान एकदम से डिसाइड नहीं कर पाए क्या करूंगा, भगवान भी डिसाइड नहीं कर पाए, क्योंकि भगवान उस टाइम गोपियों के साथ थे ना, तो ज्यादा शोक में व्यक्ति भूल जाता है सिचुएशन को, ज्यादा प्रसन्नता में भूल जाता है ना सिचुएशन को, जैसे जैसे पिता अपने बच्चे का होता है तो भूल जाता है कि मैं पिता हूं, वो भी बच्चे की तरह खेलने लगेगा, उसको समझ नहीं आ रहा तो क्या हो रहा है उस टाइम बच्चा ही बन जाएगा। से ऐसी भगवान इतने आनंद में होते हैं अपने गोपियों के साथ, अपने भक्तों के साथ, कि वो भूल जाता है कि मैं भगवान तो शंख चूड़ एक करके गोपी को चुराने ले जा रहे है। भगवान सोच रहे क्या करूं मैं, अब क्या करूं, मेरा क्या होगा, ये क्या मैं फंस गया सिचुएशन में। भगवान ऐसी बातें सोच रहे हैं लाइक एन ऑर्डिनरी मैन, ही कांट थिंक, क्योंकि बहुत हैप्पीनेस में। बट धीरे धीरे भगवान को याद आने लगेगा, अरे मैं तो भगवान हूँ मैं इस सिचुएशन में पूरा बच्चा ही बन गया, जैसे पिता बच्चे बन गए ना। पिता को फिर धीरे धीरे ध्यान आएगा जब बच्चे को उठा के ले जाएंगे कि यार मैं घोड़ा क्या बनाऊँ, मैं बच्चा थोड़े ना हूँ। सो मगर भगवान को ध्यान आने से पहले बलराम जी को पूरा सिचुएशन समझ आ गई कि ये तो डीमन चुरा के ले जा रहा है गोपियां, और कृष्णा तो अभी भूले बैठे हैं कि ये भगवान है तो सुख में। तो बलराम जी इतना गुस्सा आ रहा था शंखचूड़ पे, और साथ साथ कृष्ण पे करुणा भी आ रही थी, यार कि कृष्णा क्या मतलब बेचारे तो अभी भूले बैठे हैं कि भगवान है अब क्या करें। सो ये कौन सी करुणा है, ये भगवान पे करुणा आ रही है, मगर ये ईश्वरीय करुणा, ये दूसरा एग्जाम्पल है। और तीसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं जैसे उदाहरण के लिए नारद मुनि, जब नारद मुनि ने भगवान के चरण चिन्ह देखे, कहीं जा रहे थे तो उनके चरण चिन्ह देखे वृंदावन में, तो नारद मुनि ने कहा, तो नारद ने सब लोगों को बुला के कहा कि बहुत उत्साहित हो गए कि प्लीज भगवान की शरण लो। उनके माइंड में करुणा आ गई, किसके प्रति करुणा आई, नहीं लोगों के प्रति, भगवान के चरण चिन्ह देखे किस पे करुणा आई, लोगों के प्रति आई। तो ये भी कैसी करुणा हो गई, अब देख रहे हो, अब थोड़ा शिफ्ट हो गया, पहले भगवान पे करुणा आ रही थी मगर लोगों पे करुणा आ रही है। मगर लोगों पे करुणा आने का कारण क्या था, भगवान के चरण चिन्ह। ये एक और एग्जांपल दे रहे हैं, जब तो एक बार सहदेव और नकुल, तो एक बार सहदेव और नकुल साथ में जा रहे थे, तो सहदेव और नकुल ने भगवान के चरण चिन्ह देखे तो वो चिल्लाने लगे, हे माद्री। तो सहदेव नकुल की माँ कौन है, माद्री है ना, तो चिल्लाने लगे, हे माद्री आप कहाँ हैं, हे पांडु उनके फादर जो चले गए थे, कि आप कहाँ हैं, आप हमें छोड़ के क्यों चले गए, हमें बहुत दुख हो रहा है, हमें इतनी करुणा आ रही है आप पे कि आपको भगवान के चरण चिन्ह के दर्शन नहीं हुए। ये ईश्वरीय करुणा है। तो प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं, पता है ये लाइन लिख रहे हैं प्रभुपाद, इन डिवोशनल सर्विस विदाउट स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन टू लॉर्ड देयर मे समटाइम्स बी स्माइलिंग एंड अदर सिम्टम्स बट नेवर स्ट्रेस एंड लेमेंटेशन दैट आर सिम्टम्स ऑफ डिवोशनल सर्विस इन कंपैशन। प्रभुपाद लिख रहे हैं ईश्वरीय करुणा तभी आती है जब भगवान से बहुत आसक्ति हो, जब कम आसक्ति होती है तो हंसी आएगी, बड़ा आनंद आएगा, मगर जब बहुत आसक्ति होगी तो क्या होगा, तो जीवों पे क्या होगा, जीवों पे करुणा आएगी। इसलिए प्रीचिंग क्या है, प्रीचिंग यही है, प्रीचिंग ईश्वरीय करुणा से होती है, भौतिक करुणा से नहीं होती। जब आपको लोगों को देख के दुख होगा कि बेचारे ये कृष्ण कृष्ण इनको इनको कृष्ण की भक्ति करने का सौभाग्य ही नहीं मिल रहा, एक भगवान के चरण में इतना आनंद है और ये बेकार में सड़ रहे हैं, तब जो करुणा आएगी वो ईश्वरीय करुणा है। समझे नहीं समझे। सो वो तब प्रीचिंग होती है, और वो तब होगी जब जब आपको भगवान से बहुत ज्यादा आसक्ति होगी। आसक्ति कम होगी तो आप अपने चैंटन भी हैप्पी में होगे, गलत नहीं है चैंटन भी हैप्पी, प्रभुपाद कह रहे हैं चैंटन भी हैप्पी, बट जब चैंटन भी हैप्पी होते होते आप एडवांस कर जाओगे तब चैंटन भी अनहैप्पी होने लगोगे। आप अपने लिए तो हैप्पी होगे बट दूसरों के लिए अनहैप्पी हो जाओगे कि यार इनका क्या होगा। तो दिस इज डिवोशनल सर्विस इन कंपैशन, इसको भक्ति कहते हैं करुणामय, करुणामयी सेवा, ये करुणामय सेवा। इसलिए प्रचार डिवोशनल सर्विस इन कंपैशन है, समझे। मगर ईश्वरीय करुणा है, ध्यान रखना, भौतिक करुणा नहीं है ये, ईश्वरीय करुणा है। अभी समझ आ गया नहीं, आ गया। तो अर्जुन में कौन सी करुणा है, ईश्वरीय करुणा या भौतिक करुणा, अब बात कर रहे हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं ईश्वरीय करुणा नहीं है इस तात्पर्य में, 28 तात्पर्य में। अर्जुन में कौन सी करुणा है, ईश्वरीय करुणा है, भौतिक करुणा। क्यों, क्योंकि अर्जुन क्यों दुखी हो रहा है अपने बांधवों को देखकर, अर्जुन ये सोच रहा है कि बेचारे सब लड़ने आ गए, सब मर जाएंगे, और मेरा तो इतना सौभाग्य, हमारा इतना सौभाग्य कि हम भगवान से संबंधित हैं, भगवान की रक्षा में हैं, ये बेचारे भगवान की शरण नहीं ले पा रहे और ऐसे ही मर जाएंगे इस युद्ध में, ऐसे ही मर जाएंगे, अपना जीवन इनका एलो और गैलो, यही है ना खत्म। अर्जुन को इसलिए दुख हो रहा है उनको देखकर, अपने हार्ट्स ऑफ हार्ट्स में एक कारण, बहुत सुपरफिशियल कारण है कि धर्म की हानि हो रही है, मेरे स्वजन मर जाएंगे, बहुत सुपरफिशियल कारण है। कई कारण होते हैं ना माइंड में, है नहीं? एक व्यक्ति के माइंड में एक कारण नहीं होता। अब आप किसी से पूछो कि तूने चोरी क्यों की, तो कहेगा मैंने चोरी की, मुझे भूख लग रही थी मैंने चोरी की। फिर उसको पीटो यार साले तूने चोरी क्यों की तू बता। फिर कहेगा नहीं नहीं एक्चुअली मुझे भूख लग रही थी, मगर मेन कारण ये नहीं है, मेन कारण ये है कि कि मेरा भाई हॉस्पिटल में है, अब वो मरने वाला है, तो चोरी करके मैं बेच के पैसे कमाएंगे, उसके लिए दवाई खरीदूंगा। ऐसा होता है नहीं होता है? कारण दोनों थे, भूख भी लग रही थी और वो भी था, मगर मेन कारण क्या था कि उसका भाई था। नहीं सो कारण तो दोनों होते हैं। कारण भाई तूने पैसे क्यों चुराए, मैं लालच आ गया, देखकर लालच आ गया, जब पैसे को देखा लालच आया, मगर मेन कारण नहीं था। मेन कारण जब मैं घर से चला था तो पैसे मैं इसलिए चुरा रहा था कि पैसे चुरा के मैं गरीबों में बांटूंगा, तो मैं रॉबिनहुड बनना चाहता था। नहीं बनना तो रॉबर्ट चाहता था, मगर जैसे पैसे देखे थोड़ा सा लालच वो भी आ गया। तो अर्जुन के ऐसे ऐसे ही है। अर्जुन का मेन रीजन था कि वो उसको करुणा थी कि यार इतने सारे लोग मर रहे हैं, भगवान की शरण नहीं ले पा रहे, मेरे साथ भगवान स्वयं खड़े हैं, मेरे सामने खड़े हैं, इनके सामने खड़े हैं और ये भगवान की शरण नहीं ले पा रहे, भगवान को मारने का करुणा आई, मेन कारण था। मगर फिर जब वो देखता रहा ना उन लोगों को, तो फिर धीरे थोड़ी सी क्या आ गई, थोड़ी सी आसक्ति भी आ गई, जैसे पैसे को देख के थोड़ा सा लालच भी आ गया ना, बना तो रॉबिन हुड चलने था, वो नहीं था अलादीन, अलादीन नहीं थी, खुलदा सिमसिम नहीं था वो। तो जब वो अंदर गया तो अच्छा व्यक्ति था, मगर जब उसने हीरे जवाहरात देखे उसको आंखें, वो भैया ये कहाँ आ गए, इतना सारा धन मिल गया। थोड़ी देर के लिए वो कौन था वो जो मैं अलादीन ही था ना, अली बाबा अच्छा व्यक्ति था। अंदर गया तो उसने देखा इतना सारा धन है, थोड़े टाइम के लिए अली बाबा का माइंड भी, उसने कहा इतना धन है, फिर एकदम से उसका माइंड सही ट्रैक पे आ गया, क्योंकि अच्छे व्यक्ति थे ना, कि नहीं यार ये सब धन तो चुराया हुआ है, गलत है ये सब है, मैं हो सकता है मैं लेके गरीबों को बांट दूंगा आधा अच्छे, वो ऐसा सोच रहा था थोड़े टाइम के लिए। तो ऐसे ही अर्जुन है, अर्जुन का मेन कारण ये था कंपैशन। प्रीचर था ना अर्जुन, अर्जुन ने कहा यार इनको अपनी भक्ति नहीं लगी, मगर जब थोड़ा देखा तो थोड़े टाइम के लिए उसका लॉजिक आउट हो गया, उसका वो सोचने लगा मेरे भाई बंधु मर जाएंगे, फिर क्या होगा क्या नहीं होगा, फालतू के लॉजिक आने लगे थोड़े टाइम के लिए। इसलिए इस अध्याय में दोनों चीजें चल रही हैं, आप देख रहे हो दोनों चीजें चल रही हैं। प्रभुपाद कभी कह रहे हैं अर्जुन आसक्त था, कभी कह रहे हैं कि अर्जुन में ईश्वरीय करुणा थी। आप पढ़ो, दोनों चीजें हो सकती हैं एक आदमी में। आदमी बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, नहीं एक कारण नहीं होता कुछ भी काम करने का, ठीक है, नहीं कह रहा हूं, बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होती है, थोड़े टाइम के लिए कुछ विचार रहता है फिर इसलिए तो अर्जुन को गीता बोली, अर्जुन गीता सुन के कन्विंस हो गया, है नहीं? अगर अर्जुन में आसक्ति मेन कारण होती तो हजार गीता बोल लेते फिर भी अर्जुन का कुछ नहीं होने वाला था, जैसे हमारा कुछ नहीं हो रहा, बोल दी ना हजार बार, क्योंकि हमारा मेन कारण ही आसक्ति है। अर्जुन का ये सुपरफिशियल कारण था, इसलिए गीता बोलते ही वो कारण हट गया, और मेन कारण तो करुणा है ही। अर्जुन की करुणा थी कि क्यों मरे, भगवान की भक्ति नहीं मिलेगी, भगवान ने उस कारण को जस्टिफाई कर दिया। भगवान ने कहा अर्जुन छोड़ो यार, युद्ध में जो मरेंगे उनको मेरी प्राप्ति, तुम्हारा यही है ना करुणा, इसलिए हो रही ना कि इनको मेरी प्राप्ति नहीं होगी, छोड़ो युद्ध में मरेंगे तो मेरी प्राप्ति हो जाएगी, इसलिए तुम लड़ो। अर्जुन ने कहा हाँ ठीक है चलो यार, मेरी आसक्ति थोड़ी मोमेंट्री थी वो तो हट गई, और ये भी मैं सेटिस्फाई हो गया हूँ कि इनको आपकी प्राप्ति हो जाएगी, अब मैं युद्ध करूंगा। समझ रहे हो क्या चल रहा है? इसलिए इतना आसान नहीं पहला चैप्टर समझना, बहुत सारी चीजें चल रही हैं इसके अंदर। सो ठीक है, नहीं ठीक है समझ गए। अर्जुन इसलिए मना कर रहा था लड़ने को, तो मैंने पहले ही बोला था ना, जो आप सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं निकलेगा। आपने पता नहीं कितनी बार फर्स्ट चैप्टर पढ़ा हुआ, मगर ये चीज दिखाई नहीं देती, प्रभा के तात्पर्य में सब कुछ है। ओके, अब उसके बाद हम आगे चल रहे हैं, और हम यहां पे जा रहे हैं 32, 33, 34, 35 श्लोक में। और अर्जुन यहां पे भगवान का नाम बोल रहा है, हे गोविंद, आ रहे नहीं आ रहे? किम नो राजे न गोविंद, गोविंद क्यों बोल रहे नाम है? नहीं, गोविंद का मतलब होता है, अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गोविंद कहकर संबोधित किया क्योंकि वे गऊ और इंद्रियों के समस्त प्रसन्नता के विषय हैं। इंद्रियों को जो प्रसन्नता देते हैं उनको गोविंद कहते हैं। पहले नाम क्या लेते हैं? ऋषिकेश। फिर ऋषिकेश को समझने के लिए आपको क्या समझना पड़ेगा? अच्युत। अच्युत को समझने के लिए आपको गोविंद शब्द समझना पड़ेगा, वरना नहीं समझ पाओगे। गोविंद का मतलब क्या है? गोविंद का मतलब प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं पॉपर्ट में, इस विशेष शब्द का प्रयोग करके अर्जुन संकेत करता है कृष्ण ने समझे कि अर्जुन की इंद्रियां कैसे तृप्त होंगी, किंतु गोविंद हमारी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए नहीं बने। तो आप सेवा तो कर रहे हो, सेवा का अवसर नहीं चूक रहे, मगर आप सोच रहे हो कि सेवा करूंगा और भगवान मुझे तुष्ट करेंगे। नॉनसेंस, ये कंप्लीट नॉनसेंस है। हम इस आशा से भगवान की सेवा नहीं कर रहे कि भगवान हमारी इंद्रियों को प्रसन्नता दे। सेवा करोगे, प्रसन्नता अपने आप भगवान देंगे, वो बात अलग है, वो तो भगवान की, भगवान का ही काम है, भगवान प्रसन्नता देते हैं, मगर इस आशा से करोगे तो प्रॉब्लम है। इसलिए भगवान अर्जुन भगवान को गोविंद बोल रहे हैं। गोविंद तेरे बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं कि कृष्ण अर्जुन बोल, जैसे जैसे द्रौपदी ने गोविंद बोला था ना, क्यों बोला था? द्रौपदी कह रही है कि कृष्णा आप इंद्रियों को आनंद देने वाले हैं, इसलिए मेरी इंद्रियां अपनी सेवा में लगा लीजिए, क्योंकि सेवा करके ही भगवान आनंद देंगे। स्वयं हमें सेवा से मतलब है, जो भगवान की सेवा करता है भगवान उसको आनंद देंगे। सो द्रौपदी कह रही है कि हे गोविंद मुझे अपनी सेवा में लगा लीजिए, अब मुझे अपनी कोई परवाह नहीं, मैंने आपको सरेंडर कर दिया है, अब आपको मेरी इंद्रियों को आनंद देना है तो दीजिए, नहीं देना तो मत दीजिए, आप गोविंद है। गोविंद मतलब प्रभुपाद लिख रहे हैं यहां पर पपट में लिख रहे हैं, अब ये पढ़ो अभी आगे, किंतु गोविंद हमारी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए नहीं है। हाँ, यदि हम गोविंद की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करें तो हमारी इंद्रियां स्वतः ही तुष्ट हो जाएंगी। भौतिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है कि ईश्वर उसके आज्ञा पालक की तरह काम करें, किंतु ईश्वर उनकी तृप्ति वहीं तक करते हैं जिनके वे पात्र होते हैं, जितने वे पात्र होते हैं उस हद तक नहीं जितना वे चाहते हैं। भगवान की मर्जी की भगवान सेवक को इंद्रियों का आनंद दें या नहीं दे, और आनंद भी उतना ही देंगे जितना डिजर्व करते हो, समझे? फोर्स नहीं कर सकते। इसलिए द्रौपदी ने बोला हे गोविंद, द्रौपदी ने बोला गोविंद अब मैं आपके शरणागत हूं, आप, मैं आपकी बस सेवा करना चाहती हूं, आप मेरी इंद्रियों को आनंद देना चाहते हैं नहीं देना चाहते वो आपके हाथ में, आप मेरी रक्षा करना चाहते हैं नहीं करना चाहते आपके हाथ में, अब मैंने सरेंडर कर दिया। ऐसे अर्जुन भी बोल रहा है कि हे गोविंद मैंने आपको सरेंडर कर दिया है, अब मुझे नहीं पता क्या होगा इस युद्ध का, मैं मारूं नहीं मारूं, इसका रिजल्ट होगा क्या, होगा क्या नहीं होगा, अब आप गोविंद हैं आप देखिए, अगर इसका रिजल्ट दुख चाहते हैं तो दुख दे दीजिए, आप प्रसन्नता चाहते हैं तो प्रसन्न कर दीजिए अपने भक्तों को, अब आपकी मर्जी, मतलब सरेंडर कर दिया एक्चुअली अर्जुन ने। तो सेवा को कोई मतलब नहीं अगर हम भगवान को सरेंडर्ड नहीं है। इसलिए अच्युत के बाद क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? गोविंद। और अर्जुन तो नहीं लड़ना था युद्ध, चलो ये तो मैं समझ आ गया। तीसरा क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन था कि भगवान कितने नाम इस्तेमाल हो रहे हैं, वो तो हो गए, क्या क्या नाम थे। दूसरा था कि अर्जुन क्यों नहीं लड़ना आता था, उसका भी कारण, मेन कारण पता लग गया, अर्जुन में ईश्वरीय करुणा थी। तीसरा कि भगवान क्यों उतारू थे लड़ने के लिए। सो हम क्या सोचते हैं, भगवान क्यों लड़ाई चलना आते थे? धर्म संस्थापना अर्थ आया, ये भी एक बहुत एक्सटर्नल रीजन था, मेन कारण नहीं था। मेन कारण भगवान युद्ध पे इसलिए उतारू थे क्योंकि प्रभुपाद इसकी आखिरी लाइन में लिख रहे हैं, देख लो आप, इसी तात्पर्य की, मतलब आखिरी से आखिरी के ऊपर लाइन, मतलब थर्ड लास्ट लाइन, इस तात्पर्य की थर्ड लास्ट लाइन, भगवत भक्त दुष्टों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहते, मिल गया पेज नंबर 46 पे, भगवत भक्त दुष्टों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहते, श्लोक 32, 33, 34, 35 के तात्पर्य में ऑलमोस्ट आखिरी लाइन, किंतु भगवान दुष्टों द्वारा भक्त के उत्पीड़न को सहन नहीं कर पाते। भगवान किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा से क्षमा कर सकते हैं, किंतु यदि कोई उनके भक्तों की हानि पहुंचाता है तो उसे क्षमा कभी नहीं करते। लोग भूल गए थे कि द्रौपदी का चीरहरण हुआ है, भगवान नहीं भूले थे। लोग भूल गए थे कि पांडवों को इतना दुराचार किया है, हो सकता है पांडवों ने खुद भी भुला दिया कि छोड़िए भगवान दुराचार हम पे किया है। अर्जुन भी कह रहे हैं भगवान भूल जाइए, चलिए क्या है जो हो गया हम चलते हैं, भगवान कह रहे हैं नॉनसेंस मैं नहीं भूल सकता हूं। इसलिए भगवान उन दुराचारियों का वध करने के लिए उद्यत थे, यद्यपि अर्जुन उन्हें क्षमा करना चाहता था। भगवान अपने भक्तों के प्रति अगर कुछ हो गया कभी नहीं भूलते, किसी ने कुछ हार्म किया तो उसका भक्त बदला नहीं लेंगे, मगर भगवान जरूर बदला लेंगे। यही तो प्रेम है, नहीं वरना प्रेम है क्या? अगर भगवान भी माफ कर दे चलो माफ के, तो प्रेम ही क्या है? नहीं, प्रेम को कोई मतलब नहीं है ना फिर उसमें। सो कृष्णा इसलिए युद्ध पे उतारू थे, इसलिए नहीं ये धर्म संस्थापना अर्थ है संभावियों के हो गए। धर्म तो स्थापना ऐसे भी हो जाएगी, भगवान वहीं बैठे बैठे भी कर देंगे। भगवान तो इसलिए मानना आते थे क्योंकि इन्होंने मेरे भक्तों को तंग किया, मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। सो ये भी, ये कौन सा गुण है? ये भी ईश्वरीय गुण है। नहीं, ऐसा लग रहा है कि भगवान बदला ले रहे हैं, मगर बदला लेना ये अच्छा है बुरा नहीं है, क्योंकि अपने लिए नहीं हो रहा। नहीं, सो जैसे ईश्वरीय करुणा है ऐसे ईश्वरीय बदला भी होता है। ये भगवान की तरफ से ईश्वरीय बदला। तो भगवान के भक्तों कुछ कहे तो भगवान बदला लेते हैं, भगवान को कुछ कहे कोई तो भक्त फिर क्षमा नहीं करेंगे। ठीक है, मेरे अगेंस्ट किया तो क्षमा कर देंगे, वैसे मैं क्षमा नहीं कर सकता। क्योंकि इसलिए भीम ने दुर्योधन और दुर्योधन के जितने भी भाई थे ना 100, दुर्योधन भीम ने शपथ ली थी कि मैं इनका खून पीऊंगा, इनका सीना फाड़ के। तो युधिष्ठिर महाराज ये लोग अर्जुन तो सब भाई ये राक्षस है क्या हो गया इसको, भीम को खून पीना फाड़ फूड के मतलब बड़ी अजीब सी बात है। भीम ने कहा मैं पीऊंगा, क्योंकि इन्होंने भीम को बहुत गुस्सा था किस बात का, क्योंकि इन्होंने किसको गाली दी थी, कृष्ण गाली देते थे, ये कृष्ण ऐसे ही है, योगी है, जो भी मतलब पांडवों की हेल्प करते रहते, छलिया है, पॉलिटिशियन है, बोलते रहते नहीं थे। तो भीम को इस बात का बहुत गुस्सा था कि कृष्ण के प्रति इन्होंने ऐसे ऑफेंस गाली क्यों दी, अब मैं इनको 100 के 100 को मारूंगा मैं। सो ये तो कौन सा बदला है? ईश्वरीय बदला, समझे? ये अलग टाइप का होता है, ये सारे दैवी गुण है, ये दैवी गुण है, अच्छे गुण है, स्वार्थ के लिए नहीं है ये, भगवान के लिए। इसलिए भगवान लड़ना चाहते थे। बस ये अध्याय खत्म हो गया, फिनिश। अब आप जाके पढ़ लेना क्या चल रहा है। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय।